भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना।
अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना,
अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना।
दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर,
दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर,
तो देखती ना रहना मुझे आके बचा लेना,
तो देखती ना रहना मुझे आके बचा लेना।
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना।
संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं,
संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं,
पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना,
पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना।
तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक,
तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक।
यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना,
यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना।
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना,
भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना।
अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना,
अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना।
बस लिखा हुआ है ना, श्लोक लिखा हुआ है ना। अच्छा चलो, अब देखो बिल्कुल विषय बदल जा रहा है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, किसको करते हैं प्रश्न? संजय को। क्या प्रश्न था धृतराष्ट्र का?
कर्म क्षेत्र जया कुरुक्षेत्र युद्ध नीचे थी एकत्रित थे महाराज ने पांडव ने पुत्र अश्विन को। दैट वाज हिज क्वेश्चन टू संजय।
संजय राइट। तो माम का शब्द हमने बहुत यू नो डिटेल में उसके विषय में बात की। अब आगे दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और जाके उनको क्या कौन से वचन कहते हैं वो अब नेक्स्ट दो तीन श्लोक में है। सो पहले इसको इसका उच्चारण कर ले। दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम व्यूढ़ दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दो और तीन श्लोक साथ में जाते हैं तो दो तीन तीन का भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। पश्य एतान पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर पांडवों की व्यूहरचना देखकर अब दुर्योधन अपने आचार्य आचार्य कौन थे उनके आचार्य? दुर्योधन के आचार्य का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। किस प्रकार के ये आचार्य थे? शस्त्र विद्या के आचार्य थे। आप ठीक से बैठिए ना। तो संसार में भी देखो अध्यात्म में तो एक नियम होता ही है, लेकिन संसार में भी जो आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दिए बिना, उनके प्रति अगर मान नहीं है, उनके प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो हम उनके पास से कुछ सीख नहीं पाएंगे। अब तो जमाना इतना बदल गया है कि पैसे पैसे से लोग शिक्षक को गुरु को खरीदना चाहते हैं। नो पैसे वाले लोग होते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में आप पढ़ाने आओ, ट्यूशन देने आओ। तो ये सब इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि हमारा यू नो स्तर कितना नीचे गिर गया है। नीचे जी हमको सीखना है, कुछ विद्या लेना है तो हमको कुछ तकलीफ लेना है। बिना तकलीफ लिए हम सीख नहीं सकते हैं। पैसे देने से अगर सब सीख लेते, अगर सब ज्ञानी हो जाते तो आज पैसे का किसके पास कमी है? सभी लोग सभी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म अर्थ हमें ये देखना है कि दुर्योधन राजा थे फिर भी शस्त्र विद्या के जो टीचर्स थे, शस्त्र विद्या जो सिखाते थे उनके पास गए। टीचर को ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे पास आइए और हमको विद्या सिखाओ जो आजकल हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान के नियम है वो किसी भी नियम का पालन हम कहीं भी न व्यवहार में देखते हैं, न मंदिर में देखते हैं, न आश्रम में देखते हैं, न घर में देखते हैं। सब नियम को तोड़कर हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए। तो पहला ही नियम यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताया है कि जिनके पास से हमको विद्या लेना है उनके पास हमें जाना है, उनको अपने घर बुलाना नहीं है कि हम पैसे वाले हैं या घर बहुत दूर है या हमको तकलीफ नहीं लेना है। तो अध्यात्म ज्ञान लेना है तो उसकी तो बिल्कुल बात ही अलग है, लेकिन संसार में भी अगर कोई विद्या लेनी है, चाहे वो उम्र में तुम्हारे से कितने ही छोटे क्यों नहीं हो, बड़े और वडील और जो बुजुर्ग होते हैं उनको मान देने की जो प्रथा हमारे वहां पर है उसके पीछे एक बहुत कारण है। क्या कारण था? कि हम उनको रिस्पेक्ट करते थे, सुबह में उठकर उनको प्रणाम करते थे, हाँ, उनका कहा करते थे। तो क्या मतलब था उसके पीछे? इसलिए कि वो आपसे बड़े हैं इसलिए प्रणाम करना है? हाँ, अच्छा, उनका जो अनुभव है, अच्छा, अनुभव जो होता है उसको एक दूसरा नाम है सत और भगवान कहते हैं, अनुभव को भगवान कहते हैं, लेकिन वो अच्छा अनुभव होना चाहिए, सत के ऊपर का अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव हम जो नमस्कार करते हैं वो उनके उनका जीवन जो होता है वो सत के उसकी नींव सत के ऊपर होती है, हाँ, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। उम्र को और बाल काले हो गए इसलिए नमस्कार नहीं करना है, हाँ, अगर वो सब गलत कर रहे हैं, सभी बातें गलत कर रहे हैं, तो उनको नमस्कार करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उनको उनको जो हम रिस्पेक्ट देते हैं वो उनके अनुभव को दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल वो ये ज्ञान ढक गया है, भगवान के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो नेचुरली क्या हो रहा है कि मन नहीं होता है कि हम बड़ों को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि वो बच्चों को कहते हैं कि तुम टीवी मत देखो और खुद टीवी देखते हैं, वो खुद बच्चों को कहते हैं कि टेलीफोन पर ज्यादा बातें नहीं करो और खुद मंदिर में जाके निंदा करते हैं। तो ये हम बड़ों को रिस्पेक्ट देने की जो बात थी तो वो उनका जीवन भगवान के नियम के अनुसार था, उन्होंने उस प्रकार जीवन व्यतीत किया है, और इसलिए हम चाहते हैं कि उनको जो अनुभव कड़वे हुए हैं उनमें से हम कुछ सीख ले और हम दुखी नहीं हो। तो उनको हम जब नमस्कार करते हैं ना तो क्या होता है, उनके हृदय में प्रेम आता है सामने वाली व्यक्ति के लिए, और जब प्रेम आता है तो फिर कोई सीमा नहीं रहती है, कोई बंधन नहीं रहता है, कुछ भेद नहीं रहता है, तुम्हारे पास जो भी है वो तुम खुला कर देते हो, जो भी है। तिजोरी में जैसे लड़की होती है तो माँ को कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं कुछ भेद रखू या इसको बताऊ नहीं कि हमारा बैंक अकाउंट कितना है, कि हमारे पास कितने गहने हैं, कि कितनी प्रॉपर्टी है, लड़की को सब कुछ बता देती है। वही भाव किसके लिए? बहू के भी लिए होना चाहिए, तो उसको बहू को प्रेम होगा, नहीं तो बहू को कैसे प्रेम होगा बताओ। तो ये सब जो हमारे रिवाज तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब सत के ऊपर नियम बनाए गए थे, इसके पीछे बहुत बड़ा आशय था, ये नहीं है कि खाली दंडवत प्रणाम करना है। तो यहाँ पर आचार्य शब्द रखकर भगवान ने ये कहा कि भाई जिनको शिक्षा लेनी है, चाहे वो संसार की किसी भी प्रकार की शिक्षा क्यों नहीं हो, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, हाँ, और भी कुछ सीखना हो तुम्हें, तो तुम टीचर के पास जाओ और कुछ तकलीफ लो, उनके लिए मान हो, उनके लिए प्रेम हो, उनकी सेवा करो, तो उनके हृदय में, आजकल तो ये सब बातें नहीं होती है, क्या होते हैं, चेक लिख देते हैं तो वो पैसे से टीचर को खरीदना चाहते हैं। कुछ साल पहले, बहुत साल हो गए अभी इंडिया गए हुए, तो लास्ट टाइम कहीं बंबई गई हुई थी तो कहीं बुलाया, गीता के लिए बुलाया, तो हमने कहा नहीं, हमारा तो कहीं कमिटमेंट है तो हम तो नहीं आ पाएंगे, हम अभी कल परसों अगर सोचेंगे आ पाएंगे, तो कहने लगे नहीं, हम बड़ा आपको चेक लिख देंगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तरीका ही अपने को पता नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि वहां तो अगर कुछ भी गुरु के पास काम करवाना हो चेक बड़ा लिख दो। तो मैंने कहा ये तो गुरु नहीं, ये तो ठग है, हा? गुरु जो खरीदे जाए वो गुरु थोड़ी होते हैं, तो वो क्या सिखाएंगे हमको। लेकिन लोगों को क्या है, अभी सस्ता चाहिए सब कुछ, तकलीफ नहीं लेना है। और गुरु भी वैसे ठग निकल गए हैं कि गुरु को पता लग गया है, ये अध्यात्म जो थोड़े होते हैं क्या बोलते हैं धर्म गुरु, कि ये सौदा, ये जो व्यापार है ना, ये धंधा बड़ा सरल है। क्यों सरल है? ये भक्ति में, ज्ञान में, अध्यात्म में, धर्म में धोखा देना लोगों को बड़ा सरल है। तो बंबई में तो बहुत देखा। क्यों सरल लगता है?
अज्ञान है,
लोग अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान है। धर्म के विषय में आपको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, उसके नियम क्या है, ये सृष्टि क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो जहाँ अज्ञानता होती है वहां तो अपने आप लोग गलत रास्ते पर जा ही सकते हैं। देखो, कार लेना है तो आपको कार के बारे में सब पता है, घर लेना है तो घर के बारे में सब पता है, शादी करना है तो सब पूरे इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो सब विषय में आपकी जानकारी है। हा? अभी यहाँ के मार्ट में जाते हो तो पता है, डीलर में जाते हो तो पता है कि कौन से स्टोर की क्या प्राइस है, कहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं, कहाँ पर नहीं खाते, ये पूरा पता है। लेकिन जहाँ पर मनुष्य जीवन भगवान ने इतना बढ़िया दिया है, क्या पर्पस है, कैसे रहना है स्वजनों के साथ, सोसाइटी में हमारा क्या कर्तव्य है, हाँ पड़ोसी के साथ हमारा क्या कर्तव्य है, एक मनुष्य की तरह आए है तो स्त्री की तरह मेरा क्या कर्तव्य, ये कुछ भी पता नहीं है। किसी को भी अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और वही कारण है कि हम आपस में अभी टकरा रहे हैं। आपस में टकराना माने क्या? टकराना किसको कहते हैं?
ईर्ष्या,
झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है। दो बर्तन इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? दो चूड़ियां होती है साथ में तो बजती है, तो आवाज होती है ना। तो आवाज या घूंघाट का मतलब है अशांति। हाँ, शादी में, पार्टी में हमको लगता है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कितना घूंघाट होता है, कितनी अशांति होती है। हाँ, शांति और आनंद के लिए हम पार्टी में जाते हैं और वहां पर आवाज होता है, तो चलो वो भी एक व्यवहार है, ठीक है चलो कर लो, लेकिन फिर उसका भी, उसके भी कोई नियम है। सब दौड़ा दौड़ी हो रही है, कुछ कुछ व्यवस्थित नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जीवन में भी वही देखते हैं, इसीलिए व्यास मुनि ने बहुत बढ़िया उदाहरण लिया है कि देखो ये सब बातें, ये मत सोचो कि एक समय महाभारत की लड़ाई हुई, अर्जुन और दुर्योधन लड़े और बात खत्म हो गई, नहीं। ये सत और ये उदाहरण ऐसा है कि आज भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये युद्ध चल रहा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर। और इसीलिए गीता की सुंदरता, ब्यूटी इसमें है कि हर इंसान को ये नियम, ये बात लागू होती है। सो धर्म में क्या होता है, बहुत अज्ञानता है, तो अज्ञानता के वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। सबके विषय में पता है, हाँ एक डॉलर की कूपन होगी तो बचाने के लिए दो डॉलर की वो गैस डालते हैं, वो सब हो गए आजकल, तो सोचते नहीं है। उसमें भी व्यवहार में अगर कुशलता होगी ना, इसीलिए कहा है कि व्यवहार में कुशलता ही योग है। अगर व्यवहार में तुम्हारी कुशलता है, मतलब तुम जो व्यवहार घर में कर रहे हो स्वजनों के साथ, बच्चों के साथ, अपने साथ, गुरु के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अगर वो कुशलता है तो वही, उतनी ही कुशलता हमको अध्यात्म में चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमने हमारा जीवन कुशलता के अनुसार किया तो वही कुशलता हमको भगवान के दर्शन कराएंगे। दर्शन कराएंगे मतलब हमको अंदर से शांति, आनंद और प्रेम रहेगा। हमको प्रेम चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वो कब मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि, हम तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं कि लोग हमको प्रेम करें, लोग हमको पहले स्वतंत्रता दे। स्वतंत्रता सबको पसंद है, लेकिन तुमको कोई बंधन में रखता है तो अच्छा लगता है क्या? स्त्रियों को थोड़ी आदत हो गई होगी शायद, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स, फिर हस्बैंड, फिर बच्चे, थोड़ी सी आदत हो गई है। लेकिन अंदर से किसी को भी गुलामी या बंधन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा की तरह किसी भी व्यक्ति को बंधन अच्छा नहीं लगेगा। बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य के पास जाकर दुर्योधन, ये श्लोक में तो आचार्य के पास जाने का ही महत्व बताया है कि तुमको जाना है। आचार्य को अपने पास बुलाकर अगर तुम विद्या लेना भी चाहोगे तो भगवान पर्दा डाल देने वाला है। और बंबई में कई जगह तो ये देखा है कि वो कथा हो रही है, वो महाराज नीचे बैठे हुए हैं और वो जो घर के मालिक होते हैं वो हिंडोड़ा को क्या बोलते हैं, हिंदी में झूले में, वो झूले में झूल रहे हैं, बताओ, और वो रामायण की कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे कहीं कोई धर्म होता है? हाँ, गुरु को नीचे बैठा है और खुद ऊपर बैठे हैं और वो भी सुन नहीं रहे हैं, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो पंडित वहां रामायण बोल रहे हैं। देखो इतना इनो धर्म में तो ये धर्म के बहाने ये धंधा चल रहा है आज, तो आश्चर्य लगता है कि लोग ये पढ़े लिखे हैं लोग, ये भी बात नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसी धर्म के बारे में शंकाशील हो जाते हैं, डर में आ जाते हैं। आजकल का जो धर्म है ना वो भय के कारण धर्म का पालन हो रहा है, भय डर लग रहा है लोगों को कि भाई हम ये नहीं करेंगे, दिया नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, तीर्थ स्थान में नहीं जाएंगे, विद्या नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बुरा हो जाने वाला है, ये ब्रेन वॉश कर दिया लोगों को। तो सच कहीं भी गीता में ये नहीं कहा गया है। अभी हम देखेंगे आगे आगे, अभी तो पहला ही श्लोक हो, पहले ही अध्याय में है, तो आगे पता लगेगा कि क्या हमको भगवान कह रहे हैं। तो ये याद रखना है कि हमको भगवान यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमको किसी के पास से कुछ भी अगर विद्या लेना है तो उसका दाम चुकाना पड़ेगा। कार आपको कार लेक्सस लेने जाते हो, कौन सी कार बढ़िया कही जाती है अभी? लेक्सस महंगी महंगी अच्छी गाड़ी तुम लेक्सस लेने के इनो चाहते हो, और फिर वो सस्ती में सस्ती कौन सी है? 5-7 हजार की पैदल गाड़ी तो वो
आई थिंक
हंडा। अच्छा जो भी कहोगे कि हम उसके ही दाम चुकाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो मिलने वाली है आपको लेक्सस? अब तो फिर आप कहोगे कि हम पैसे दे देंगे, $500 का चेक लिख देंगे और आप हमारे नाम का मंत्र जप करो और हमको शांति दे दो। कभी हुआ है? कभी हुआ भी नहीं है, होने वाला नहीं है, लेकिन ये भी चालू है ना, फिर भी चालू है कि नहीं चालू है? तो चालू तो है ही। तो प्रत्येक वस्तु का दाम कीमत चुकाए बिना हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये नियम किसका है? ये सत का नियम है, भगवान का नियम है। ये जो भगवान के नियम में जब कहती हूँ तो वो कभी भी बदलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी जमाना हो, चाहे कोई भी प्रसंग हो, चाहे कोई भी घटना हो। मनुष्य के नियम बदलते रहते हैं क्योंकि जमाना बदलते रहते हैं। पहले हम पैदल जाते थे, आज गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो वो नियम थोड़े बदलते रहते हैं। और वो नियम थोड़े बहुत बदले उसमें कोई ज्यादा इतना नुकसान नहीं है, लेकिन भगवान के जो नियम है चाहे वो कोई भी जमाना हो, एक ही नियम है भगवान का कि अगर तुमको किसी के पास से, क्योंकि सृष्टि के पास से हम लेते ही आए हैं, पंच महाभूत के पास से हम लेते ही आए हैं, तो लेने का मतलब है फिर देना है। कोई भी विद्या अगर आप मुफ्त में लोगे ना, कोई भी विद्या आपको पचने वाली नहीं है, कि ये एक प्रकार का संबंध है, व्यवहार है, क्योंकि गुजारा कैसे होगा? हमारे वहां तो यही तो टीचर्स की प्रथा देखो कितनी खराब हो गई है, बच्चों को टीचर्स को ठीक तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिला, टीचर्स को ठीक तरह से पैसे नहीं मिले तो उनको ट्यूशन करना पड़ा। अब एक ही टीचर है, ट्यूशन करेंगे 8 घंटे भगवान ने काम करने का कहा है, असल में तो 6 घंटे ही कहा है। 6 घंटे से ज्यादा मनुष्य ने काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि खाली गधे की तरह काम करने मनुष्य नहीं आया है। फिर उसको 6 घंटे व्यवहार भी करना है, हाँ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, घर के साथ, बच्चों के साथ, फिर 6 घंटे सोना है और 6 घंटे धर्म का काम करने के लिए दिए थे, तो 6-6 घंटे का समय हमारे धर्म में गिना गया है, बताओ उसके अनुसार हमारा जीवन कहाँ है? 6 घंटे धर्म का काम करने के लिए क्या 1 घंटा भी हमारे पास किसी के लिए समय नहीं है? और फिर वो भगवान के नियम के अनुसार नहीं चले तो फिर जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्थित जीवन में अशांति ही रहेगी, शांति थोड़ी मिलने वाली है। तो तीसरे श्लोक में देखो अब क्या बात होती है। आपने महाभारत तो देखा होगा ना? देखा है महाभारत तो थोड़ी बहुत तो आपको स्टोरी तो पता होगी कि ये द्रोणाचार्य कौन थे, द्रुपद पुत्र कौन थे। यहाँ पर कहते हैं देखो आचार्य के पास जाकर दुर्योधन का वर्तन देखो, ये टिपिकल जो पैसे वाले होते हैं ना, वो गुरु को खरीदना चाहते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन का वर्तन है अभी द्रोणाचार्य के प्रति। उसको लगता है कि ये तो यू नो ये तो मेरा तो अन्न खा रहे हैं द्रोणाचार्य, तो इनको तो मैं चाहो वैसे यू नो हुक्म कर सकता हूँ। तो उनको कहते हैं कि देखिए आपके बुद्धिशाली शिष्य द्रुपद पुत्र से व्यवस्थित हुई। चलो इनका ट्रांसलेशन लिख लो। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए, द्रुपद्युम्न द्वारा राइट राइट, और द्रौपदी का
भाई
राइट। अच्छा ये किसकी किसकी सेना की बात हो रही है?
पांडव
की सेना। और उसका लीडर कौन है? तो ये
धृष्टद्युम्न।
तो देखो यहाँ पर गुरु को पता नहीं है, गुरु लड़ने आए हैं राइट, किसके पक्ष में है? दुर्योधन के पक्ष में है। अब गुरु को जाकर ये दुर्योधन कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी कहने की कि आपका शिष्य है। देखो विशेषण, एक तो आपका शिष्य है बुद्धिमान, और फिर वो भी कहा कि बुद्धिमान शिष्य है आपका है? और वो भी याद ये कराने चाहते हैं कि वो आपका ही शिष्य आज आपके विरुद्ध आकर खड़ा है। तो द्रोणाचार्य है एक्चुअली तो शस्त्र विद्या के यहाँ पर टीचर बता गए थे, लेकिन उनको अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान था। लेकिन संजोग आपको स्टोरी तो पता होगी ना उनकी, कि बहुत गरीब थे, खाना नहीं था उनके पास, तो ये राजमहल में उन्होंने दोनों पांडवों को और कौरवों को दोनों को भी शस्त्र विद्या सिखाई और उनके ऋण में आ गए। हाँ? उनके हाथ नीचे आ गए, क्यों? क्योंकि उनका अन्न खाया। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भले ही लोग तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पक्ष किस किसका लिया उन्होंने? असत का लिया, कौरव का लिया। तो जब मनुष्य में कितनी भी अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर समय आने पर वो गलत लोगों का साथ दे, तो उनकी जो रियल अच्छी क्वालिटी होती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, कुछ भी जीरो वैल्यू हो जाती है। क्योंकि ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होते हुए भी अगर असत के सामने तुम झुक जाओ तो ज्ञान का आपको क्या लाभ हुआ बताओ? ज्ञान का तो लाभ होना चाहिए ना। ज्ञान की वजह से मनुष्य को पता होना चाहिए कि किस मार्ग से हम कहां पर जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। तो उनको इतना ज्ञान था, भीष्म को भी, भीष्म भी ये बड़े ज्ञानी थे, भक्त थे भगवान के, लेकिन देखो प्रॉमिस को पकड़ के रखा। कौन से प्रॉमिस को पकड़ के रखा? कि हम राजगादी का रक्षण करेंगे। तो इसके पीछे क्या था? ज्ञान था लेकिन शुष्क ज्ञान था। राजगादी की रक्षा का जब उन्होंने प्रॉमिस दिया तो तब की बात अलग थी। एकदम सारा वातावरण समय बदल गया, तो उसके अनुसार फिर उन्होंने अपने शब्दों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि रियली अध्यात्म ज्ञानी जो होते हैं ना, कभी किसी को प्रॉमिस नहीं देते हैं। आदमी प्रॉमिस दे सकता है बताओ? हाँ दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। और देता है ना तो उसको पता नहीं है कि वो पूरा कर सकेगा या नहीं। तुमने कहा कि चलो मैं कल आपको हेल्प करने वाली हूँ किसी भी छोटी बातों में, लेकिन अगर आप बीमार हो गए, आपके घर कुछ इमरजेंसी आ गई, हाँ, तो आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हो? हमारे हाथ कल क्या होने वाला है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमेशा कहना चाहिए कि भी भगवान, ये हर बात कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान की मर्जी। लोग पागल समझते हैं आजकल, हरी इच्छा बोले तो बोलेंगे पागल है ये तो। हाँ वो तो वही कह सकते हैं जो नरसिंह मेहता थे, क्योंकि रियली वो हरी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं। तो रियली प्रॉमिस हम नहीं दे सकते हैं, ये कहना कि हम कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक तो झूठा प्रॉमिस दिया। क्यों झूठा प्रॉमिस दिया? उनका प्रॉमिस ठीक था ये समझ लेना चाहिए। ठीक तरह से भीष्म पितामह ने जो प्रॉमिस या वचन अपने पिता को दिया वो ठीक था। क्या वचन दिया था? अच्छा, भीष्म पितामह किसके लिए फेमस है? प्रतिज्ञा के लिए फेमस है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, शादी नहीं करूंगा ये उन्होंने वचन दिया था आपने। तो वो वचन किस कारण दिया था? इसलिए उन्होंने अपने पिता को ये वचन दिया था। स्थिति कुछ ऐसी आई थी कि अगर वो शादी करे तो प्रॉब्लम खड़े हो गए भविष्य में, जो कुछ भी हो। अभी तो हमको देखना ये है कि मैसेज क्या है। तो उन्होंने अपने पिता को मोह के कारण वचन दिया था, और जब मोह आता है ना तब आदमी का विवेक ढक जाता है। तो जो भी वचन देते हैं वो गलत ही देता है। मोह में जब मनुष्य आ जाता है तो वो वचन दिया था तो उस वक्त उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, नहीं तो ऐसे वचन नहीं देते। शादी की बात नहीं थी, ब्रह्मचर्य पालन का पालन से थोड़ा कुछ सुख मिलने वाला है, उसके साथ तो और भी बातें आती है। यू नो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हर क्रिया भगवान के प्रति जाती हो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी भगवान, चर्य यानी तुम्हारा खाली हर क्रिया तुम्हारी ब्रह्मन की ओर मतलब सत की ओर जाती हो, वही ब्रह्मचर्य है। तो इन्होंने तो खाली वो एक ही शब्द को पकड़ रखा, और वो भी गलत था। अगर वो शादी करते तो और ज्यादा अच्छा होता। उस वक्त संजोग के अनुसार गलत प्रॉमिस दिया और गलत प्रॉमिस को पकड़े रखा। तो यहाँ पर ये सिखाते हैं कि अगर हम मनुष्य है, कभी यू नो इमोशनल हो जाते हैं, प्रॉमिस दे सकते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि गलत प्रॉमिस को तुम पकड़े रखो। गलत जो भी है, मनुष्य को विवेकी मनुष्य उसी को कहा जाएगा कि तुम गलती करते हो उसको सुधार लो। प्रॉमिस भी दिया तो अहंकार तुम्हारा एक तो बहुत बीच में आता है, हाँ, कि मैं प्रॉमिस किया है कि मैं चलो तुमको पार्टी में हेल्प करने वाली हूँ, और तुम बीमार पड़ गए हो, फ्लू हो गया है, तो फ्लू होगा ना तो किसी और को बुलाऊंगी कि भाई मैंने प्रॉमिस दिया है तो मुझे तो नहीं, तो वो तो मेरी बातें करेगी, निंदा करेगी मेरी, तो तुम घर में आओ और हमारे को खाना बना दो और तुम भेज दोगे। तो ये अहंकार है कि मेरा कहा, मैंने प्रॉमिस दिया है तो मैं गलत, लोग मुझे ये नहीं कहे कि भाई तुमने प्रॉमिस दिया और तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो गलत अगर प्रॉमिस दे दिया है किसी बात से, अज्ञानता से, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं ना, यू नो हम देखते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई वहां पर भी आजकल ये होने लगा कौन कितना डोनेशन देगा, तो उसमें भी लोग इमोशनल यू नो आके थोड़ा सा बोल देते हम इतना देंगे इतना देंगे, फिर घर आके सोचते अरे ये तो हमने बहुत ज्यादा रकम दे दी है, तो वहां बदल जाते हैं लोग। हाँ पैसे की बात आती है तो गृही लोग बदल जाते हैं कि नहीं 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 कोई बात नहीं, वहां कहा सो कहा अब हम नहीं देंगे। लेकिन वहां तो ठीक है पैसे ही जाने वाले थे, लेकिन यहाँ तो पूरा जीवन चले गया। और आप खाली जीवन ही नहीं दूसरे आप उसके साथ कितने लोगों को ले गए, भीष्म पितामह की एक गलती की वजह से देखो क्या हंगामा हो गया। और लोग अभी भीष्म पितामह को पूजते हैं, कृष्ण को पूजना चाहिए या भीष्म पितामह को पूजना चाहिए? भीष्म कई कई बच्चे जो होते हैं ना बच्चों को क्लास लेती हूँ तो एक बच्चे ने कहा कि भीष्म पितामह तो भगवान है, कृष्ण से भी बड़े भगवान है, हमारी माँ ने कहा। तो अब देखो माता को ज्ञान नहीं होता है बिचारी को, तो फिर वो बच्चों को गलत गलत सिखाती है, तो अब गलत सीखेंगे तो गलत ही जीवन में आचरण होगा ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि गलत अगर प्रॉमिस किया है किसी को भी, इंसान है कभी भूल तो होने वाली है, ऐसा थोड़ी है कि एक भगवान के सिवा सब अपूर्ण है, सबसे गलती हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे अगर संत है वो तो नम्र होते हैं, तो वो तो कभी ज्यादा बोलते नहीं कि भाई मेरे से गलती नहीं होगी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भाई मृत्यु तक पता नहीं है कब हम गलती कर देंगे, मनुष्य तो गलती के लायक ही हो ही जाती है, तो गलती करो तो सुधार लो, ये नहीं कि तुम गलत प्रॉमिस दे रहे हो तो गलत को भी पकड़ के रख लो कि बस अब हम हमारा मान रहना चाहिए, हमारी हमारी शान रहनी चाहिए, हमारी प्रेस्टीज बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो हमारी छाप तो ऐसी है कि लोग गोगो पता है कि हम देंगे। परिस्थिति बदल गई, बात कह दो कि भाई हम बीमार पड़ के हमारे से बात नहीं हुई तो नहीं हुई, तुम्हारे हाथ की थोड़ी बात है, जो तुम हाथ में तुम्हारे कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ भी है, हमने मान लिया कि हमारे हाथ में है, तो जब जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है प्रकृति में, बीमार पड़ते हैं मृत्यु होती है, तो हम परिस्थिति का विरोध करके भगवान का विरोध कर रहे हैं। भगवान जो भेजता है वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है, तो हमको वो आनंद से स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा लगे चाहे वो अच्छा नहीं लगे। जो परिस्थिति हमारे सामने आई है वो हमारी की हुई है, किसी और की हुई नहीं है, ये सारे नियम भगवान के हैं। अगर ये ट्रिक हमने समझ ली, भगवान के नियम को अच्छी तरह से समझ लिया, तो मनुष्य को शोक में आने का कोई मौका ही नहीं। बीमारी भेजी, बीमारी स्वीकार लो, हाँ और कुछ भेजा सपोज की, जो कुछ भी भगवान भेजता है वो प्रकृति में होने ही वाला है। उस ये ज्ञान ऐसा है कि वो रास्ता बताता है कि उसको किस प्रकार से स्वीकार करना है। यहाँ पर ये स्वीकार किए अभी सिखा रहे हैं कि गलत प्रॉमिस दिया बदल दो कि भाई आई एम सॉरी, हमारी भूल हो गई, हमने गलत प्रॉमिस दे दिया था जल्दी में। कई स्त्रियां होती है ना तो वो वीकेंड आते हैं तो दो तीन कमिटमेंट कर देती है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, इसको भी खुश करना है उसको भी। अब बोलते हैं कि हम किसको नाराज करें ना? तो उसमें उनको बड़ी उलझन आ जाती है कि उलझन की क्या बात है, जिसने पहले कहा वो चाहे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो चाहे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो उनके वहां चले जाओ, लेकिन तुमको तो सबको खुश करना है, सच बोलना नहीं है, बताना है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की यही है डेफिनेशन कि उसकी नचाए तुम नाचो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया तो बेस्ट फ्रेंड चली गई। तो ऐसी परीक्षा होती है क्या बेस्ट फ्रेंड की? बेस्ट फ्रेंड तो उसको कहा जाता है कि जो एक दूसरे को समझते हैं, सेक्रीफाइस है, कहीं शंका का स्थान ही नहीं है कि भाई तुम नहीं आए तो तुम, वो तो यही कहती है कि तुम नहीं आए इसलिए कि तुमको आना ही नहीं था, शंका आ जाती है, तो उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं कहते। तो ऐसे जब यहाँ व्यवहार हो गए ना तो इंसान सुखी नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार ही हमारा गलत है, इसलिए धर्म का पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म के ऊपर व्यवहार करना था, व्यवहार के ऊपर धर्म को नहीं चलाना है। आजकल क्या हो रहा है, व्यवहार के नियम के ऊपर हम भगवान को या शांति को या धर्म का पालन करना चाहते हैं। तुम्हारे अभी सब जो है क्या बोलते सब लोग जॉब करने लगी है, स्त्रियां भी जॉब करने लगी है, तो वो कुछ जन्माष्टमी आती है तो अभी जन्माष्टमी वेन्सडे को आ रही है और मना रहे हैं सेकंड में, देखो व्यवहार के ऊपर जन्माष्टमी। भगवान को अभी भगवान को बोलते तुम भी सेटल हो जाओ, अब अमेरिका हम आए हैं हाँ, और फिर ये भी भगवान को नहीं कहना है कि हम दम्भी है कि हम गलत कर रहे हैं, हाँ भगवान को तो हम तो ये तो भूल ही गए हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, उसको तो सब पता ही है। हा? अरे बता दो भाई कि हम ये तेरी माया में आ गए हैं, अब वेनसडे नहीं कर रहे हैं तो हम संडे कर रहे हैं, तो कम से कम सरलता तो लाओ। चलो बात ठीक है, यहाँ का जीवन ऐसा है, हम भी समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका भी रास्ता है कि दंभ नहीं करो। ये तो ये भी दंभ हो रहा है कि हम तो सब धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, और फिर परिणाम चाहते हैं कि भक्ति का फल शांति होना चाहिए, ज्ञान का फल शांति होना चाहिए, सच्चे कर्मों का फल शांति होना चाहिए। अगर शांति नहीं है तो मान लेना कि कहीं तुम्हारी गलत है। जब दवाई काम नहीं करती है तो तुम दवाई या डॉक्टर नहीं बदलते हो क्या, कि सालों तक बेड में पड़े रहते हो? उसी प्रकार ये ज्ञान तो इतना पावरफुल, इतना इसमें शक्ति है कि तुम्हारे सारे दुख का अंत इसमें आ जाना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये बीमारी जो होती है ना शायद इस जन्म की है, लेकिन ये हमारी जो मन की बीमारी है ना, मन के संस्कार, वो जन्म जन्म के हैं, इसलिए टाइम लगता है। और लोगों को इंस्टेंट चाहिए, यहाँ पर इंस्टेंट, माइक्रोवेव इंस्टेंट, वो रिमोट कंट्रोल भी है इंस्टेंट, सब इंस्टेंट, उठना ही नहीं है किसी को, तकलीफ ही नहीं लेना है। तो वैसे भगवान को चाहते हैं कि बटन दबाए भगवान मिल जाए, और वो बात होने वाली नहीं है, चाहे जमाना बदल जाए। हाँ बेला, क्या है क्वेश्चन?
क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि इफ यू आर अपफ्रंट, जाके बोल दो फ्रेंकली कि दिस इज द पोजीशन, कि ये हो रहा है, ये होगा तो मैं नहीं कर सकूंगी, ये होगा तो मैं कर सकूंगी, दिस इज माय प्रॉब्लम। इफ यू गो अपफ्रंट एंड टेल देम फ्रेंकली, पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, यू नो, एंड दे टेल यू के इधर झूठ बोले छे, के लानत नहीं। सी फ्रेंकली चोखू तमे कहो तो पण तमे प्रॉब्लम, झूठ बोलो तो पण तमे प्रॉब्लम।
देखो अभी तुमने कहा कितना सरल है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, दोनों भी तरफ से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना ऐसा रास्ता चूज करे कि जिसमें हमारा लाभ हो जाए। अब लोग तो बात करने ही वाले हैं, तो एक तो क्या है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो सबसे पहला नियम ये है कि हकीकत होनी चाहिए, ओके, डोंट टेक एडवांटेज, दूसरों को डिसीव नहीं करना है कि रियली तुमने कहा कि सपोज तुमने दो जने की फोन आया है, सपोज एग्जाम्पल लो, पता नहीं तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है कि लोग बुरा मानते हैं, लेकिन दो जनों ने पार्टी में इनवाइट किया है, हा? तो एक दोनों एक ही साथ तो फोन नहीं आ सकता है, हा? तो जब दूसरा पार्टी वाला कहता है तो भाई कह देना कि आई एम सॉरी, कमिटमेंट हो चुका है, समय तो उतना है, हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसमें हकीकत होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों के मन में सरलता नहीं होती है, उनको दोनों को खुश करना है, और तुम ये मत मानो कि लोगों को तुम खुश कर सकोगे। लोग तुम्हारी बड़ी चिंता क्या है मालूम, कि लोगों को नाराज नहीं करना है, ये तुम्हारा कंसर्न है, और ये बात भी गलत नहीं है, क्यों हम बेकार में लोगों को नाराज करें, लेकिन लोग तो मूर्ख है। अब मूर्ख लोगों को तुम कैसे खुश रख सकोगे हमेशा? मूर्ख का मतलब है अज्ञानी लोग। उद्धव गीता में और हमारे शास्त्रों में मूर्ख उनको कहा है कि जो अज्ञानी है। अब अज्ञानी को तुम कैसे खुश रख सकोगे? घड़ी में ये डिमांड करेगा, घड़ी में ये डिमांड करेगा, जाओगे तो भी कहेंगे तू तो 10 मिनट लेट आए, टाइम पर तो आई नहीं जाओगे तो कहेंगे तुम तो आई नहीं। तो लोगों को तो वो कहानी याद है कि नहीं, वो ऊंट पर कही थी मैंने कई बार ना, आप लोगों को यहाँ पर नहीं की होगी, कि एक कपल था तो गांव के देहाती थे, मुसाफरी कर रहे थे ऊंट पर, तो पहले हस्बैंड बैठा, वाइफ नीचे चल रही थी, तो लोग निंदा करते हैं कि ये देखो ये क्या जमाना है आया है, पुरुष ऊपर बैठा है, स्त्री बिचारी पैदल चल रही है। तो इन्होंने सुना तो कहने लगे, हस्बैंड ने कहा चलो आप बैठ जाओ मैं चलाता हूँ, तो बोले अरे ये तो बेशर्म स्त्री है। तो फिर कहने लगा आप करे क्या, चलो दोनों भी बैठते हैं, तो बोले ये क्या आदमी है कि जानवर है, अपने आप खुश होगे, लेकिन उस वक्त नहीं होगे, जब आप करोगे तब समय लगेगा। संतों ने और भक्तों ने कभी भी लोगों को खुश करने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन आज हम मीरा से खुश हैं। हमको कोई शिकायत है मीरा से बताओ, हमको कोई शिकायत है कृष्ण से, राधा से, महावीर से, या बुद्ध से, या शंकराचार्य जी से? क्यों? कि भगवान के आदमी थे, सरल थे, जैसा था वैसे बता देते थे, दंभ नहीं था उनके जीवन में, सबका कल्याण चाहते थे, सबके प्रति प्रेम था, तो पहले है ना, डोंट वरी अबाउट किसी का भी, हमारा जीवन सुधार लो। यहाँ पर अध्यात्म में एक ही बात आती है, धर्म में शायद हो सकता है कि दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं कि तुम सुधरो, तुम्हारा स्वभाव सुधरो। अध्यात्म और सत्य और गीता में एक ही बात है, जगत कभी भी सुधरने वाला नहीं है, अपनी और उंगली रखो कि मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है। किस प्रकार सुधरना है? भगवान के नियम का पालन करके। तो जब किसी को कहो तो उसको समझाओ, भले भी उसको सुनना हो चाहे नहीं सुनना हो, पहले तो हकीकत होनी चाहिए, क्योंकि लोग ही दम करते हैं अंदर से कि भाई हो सकता है कि नो तुमको इनडायरेक्टली पता भी लगा हो लेकिन उसकी पार्टी में तुमको नहीं जाना हो, हा? तो तुम उसको इग्नोर करते हो, पता है कि जाना है, बुलाने वाला है, तो भी जिनके वहां पसंद करोगे ना वहीं तुम जाओगे। तो वो हकीकत होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर ये याद रखना है कि भगवान देख रहा है, भगवान बीच में है, भगवान से डरना है, लोगों से नहीं डरना है। आजकल लोग लोगों से डरते हैं तो लोग ज्यादा डराते हैं, और भगवान से डरते नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है, इतने बुद्धिशाली और कॉलेज में अपने आप को बड़ा मानते हैं। भगवान से डरना चाहिए क्योंकि भगवान तो प्रत्येक पल हमारे साथ है, और वो तो पकड़ने वाला है हमको, और लोगों के तो दो ही आंखें, कहाँ पकड़ने वाला है, पकड़ ही नहीं सकता। उसकी शक्ति ही क्या है मनुष्य की? कुछ भी नहीं है। तो जिसकी शक्ति कुछ भी नहीं है उससे हम डरते हैं, और जिसकी शक्ति अपार है उससे हम डरते ही नहीं है। सबको खुश करने में लगे हुए, खुश करो खुश करो। कभी खुश हुआ है कोई? जरा सोचो तो सही, अभी 50 साल की उम्र हुई, कौन किसको तुम खुश कर पाए? उसकी एक ही बात है कि तुम अपने आप को खुश नहीं कर पाए। जब अपने आप को खुश नहीं कर पाए, तुमको जो करना था तुम कर पाए? तुमको जितनी डिजायर थी उतनी पूरी कर पाए अपने अपने शरीर के पास से? हाँ, तुम चाहते हो क्रोध नहीं करना है, तुम चाहते हो जेलस नहीं करना है, तुम चाहते हो हेल्दी रहना है, कर पाते हो कुछ भी? कुछ भी नहीं कर पाते, तो दूसरे के पास तुम कैसे कराओगे? तो ये हो ही नहीं सकता। जो बात हो नहीं सकती उसकी तुम आशा लेके बैठे हो कि इसको नाराज नहीं करना है। पहले भगवान ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं किया होगा गीता में कि कौशल कुशलता ही योग है। तो तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए कि मॉडरेशन में, कि अगर फ्रेंड है तो इतने सारे फ्रेंड बना लेते हो और उसको फिर तुम उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। बहुत कम फ्रेंड बनाओ, चुने हुए फ्रेंड बनाओ, लेकिन ऐसे फ्रेंड बनाओ कि जो तुमको समझ सके। और जो फ्रेंड तुमको समझ नहीं सके वो फ्रेंडशिप के लायक है तुम्हारे? छोड़ दो उसको। जो फ्रेंड समझ नहीं सकते चाहे एक ही फ्रेंड हो, लेकिन ऐसे मित्र रखो जो तुमको समझ सके, जो तुम्हारी गलती नहीं देखे, जो तुम्हारा दोष नहीं देखे, केवल फ्रेंडशिप के कारण तुम्हारी फ्रेंड बनी हो, केवल फ्रेंडशिप के कारण। तो ऐसी फ्रेंडशिप में तुम कर सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको हमारा नाम बढ़ाना है, वाह वाह चाहिए, यू नो लोगों के पास से प्रशंसा चाहिए, तो फिर वो उसका तो फल हम नहीं कह सकते क्या आने वाला है। तुम सीधा जीवन अपना कर दो, लोग धीरे धीरे तुम्हारी गलत छाप होगी ना अब सुधरने लगेंगे, गीता के अनुसार तुम करने लगेगे ना तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी पहले की बेला है, हा? पहले की बेला की छाप है। अब धीरे 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 तुम क्या करोगे, सत्य के नियम के अनुसार जब करने लगोगे, बोलो कुछ भी नहीं, ये मत बोलो कि मैं गीता सीख रही हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, कहो कि मैं सच है इसलिए कर रही हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारी छाप बदल जाएगी। लोग तुम्हारा शब्द ग्रांटेड नहीं लेंगे, गलत नहीं समझेंगे, लेकिन उसके लिए भी धीरज चाहिए, क्योंकि तुमने पहले से गलत इंप्रेशन दी है और तुम सच अब कर रहे हो और तुम ये चाहते हो कि लोग तुमको तुरंत ही समझने लगे, तो वो बात नहीं होने वाली। थोड़ा समय दो लोगों को, 4 साल 5 साल, फिर धीरे धीरे लोग समझेंगे कि नहीं भाई ये अब पहले से बदली हुई। कई लड़कियां मुझे कहती हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये रियली बदल गई है गीता लेने के बाद, अच्छी तरह से, अच्छे अर्थों में। तो दो बातें याद रखना है ये श्लोक में से, कि लोगों को खुश करने की कभी भी चिंता नहीं करना, और दूसरी बात कभी भी अच्छे लगने की प्रयत्न नहीं करना। अच्छे बनो, अच्छे लगने की कोशिश करते हो तुम और अच्छे हो नहीं, सी अच्छे हो तो उसको दम करना पड़ता है कि मैं अच्छी हूं, नहीं, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा ही दिखाई देगा। तुम क्या है, अच्छे नहीं हो और अच्छे बताने की कोशिश कर रहे हो, घर क्लीन नहीं है और घर क्लीन कर है ऐसा बताने की कोशिश करते हो, तुम्हारे में तुम्हारे को जेलसी होती है और तुम ये बताना चाहते हो कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे में जेलसी और क्रोध तो है ही नहीं। सी, तो अच्छे बनो, अच्छे दिखाने की कोशिश मत करो और लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी भी लोग न तो अब आज तक तो मैंने कभी भी सुना नहीं कि लोग किसी से खुश है। अगर खुश है तो केवल रियली सत से खुश है, भगवान से खुश है, संतों से खुश है, भक्तों से खुश है। और वही सबको करना है, चाहे तुम भगवान को मानो चाहे नहीं मानो, चाहे कर्म के नियम को मानो चाहे नहीं मानो, इसके सिवा दूसरा कोई भी चारा नहीं है, कुछ भी दूसरा उपाय नहीं है। धर्म यही सिखाता है कि पहले हम अच्छे बनेंगे तो अच्छा ऑटोमेटिक। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा काम करें और लोग हमको देखें और तारीफ करें। अरे तुम्हारे काम को बोलने दो, तुमने जो काम किया है ना, काम अपने आप बोलता है, तुमको पता है। अगर तुमने अच्छा कोई खाना बनाया है मन देकर प्रेम से, हाँ भगवान के नियम के अनुसार स्वच्छता से, वो सेल में और सड़ी हुई सब्जी नहीं बनाई है, अच्छा बना है खाना, तो तुमको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि ये मेरी सब्जी मैंने बहुत अच्छी बनाई है, सेल में नहीं लाई हूँ, प्रेम से बनाया है। सब्जी को बोलने दो, लोग सब्जी खाएंगे तो अपने आप। हर बात में ऐसा है, हाँ तुम अच्छा व्यवहार करो, लोग आगे शायद हो सकते हैं जेलसी की वजह से लोग सामने प्रशंसा नहीं करते हैं, जैसे निंदा नहीं करते ना, हमारे में एक प्रकार की ये है क्या बोलते हैं, थोड़ी उदार भावना नहीं है और लगता है कि भाई सामने प्रशंसा करेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे। ये भी बहुत गलत ब्रेन वॉश कर दिया है सबको, कहते हैं कि बहू की और लड़की की प्रशंसा सामने नहीं करना नहीं तो सिर पे चढ़ जाएगी। तो ये सब गलत फहमियां वहम ये सब निकालना है। तो हमको दंभ हमारे जीवन में से, सुखी होना है ना तो दंभ निकाल दो, तो जैसे हो वैसे दिखने दो। अगर घर थोड़ा तुम्हारे से क्लीन नहीं हुआ है तो घर को देखने आए हैं या तुमको मिलने आए हैं, किसको मिलने आए हैं, तुमको मिलने आए, लेकिन तुम घर बताना चाहते हो तो फिर घर बताना चाहते हो तो उसका बदला वही मिलने वाला है। लोग घर को ही प्रेम करेंगे, घर के कारण तुमको प्रेम करने वाले हैं, तुम्हारे कारण तुमको प्रेम नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये एक नियम है ना, वो अध्यात्म में हर जगह लागू होते। सो कोशिश कभी भी नहीं करो कि मैं अच्छी हूं तो अच्छी दिखाई दूं, जैसे हो वैसे दो, लोगों को ज्यादा प्रेम होगा आपके प्रति, कि बड़ी सरल है नेचुरल है। कभी भी नहीं है तो बिल्कुल जीवन ही ऐसा करो कि तुमको झूठ नहीं बोलना पड़े, मस्का नहीं मारना पड़े। आजकल फिर किसी को नाराज करते हैं तो एक घंटे तुम्हारी उसमें ही एनर्जी जाती है मनाने में, पहले गलत करते हो फिर उसको मनाने में, तुम्हारी शक्ति सब आनंद में जाती नहीं है ना, रूठ जाते हो और फिर मनाते हो। वंस इन अ वाइल हो तो ठीक है, यहाँ तो मनाना ही मनाना है और रूठना ही रूठना है, उसी में सारी एनर्जी। एनर्जी भगवान ने इतनी दी है तो आनंद करने के लिए, भगवान का कुछ अच्छा काम करने के लिए, जॉय करने के लिए, तो नहीं बस उसी में। बच्चे भी रूठ जाते हैं मनाओ, हस्बैंड वाइफ भी मनाते हैं, फ्रेंड भी रूठ जाते हैं, तो मनाना क्या है, मनाना क्या है। अगर तुम सच हो तो मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम ही झूठे, वो भी झूठे, हम भी झूठे, दोनों भी झूठे हुए तो दोनों फिर क्या क्या होगा बताओ, ठीक है ना। कोई प्रश्न है, समझ आ रहे हैं ये। ये दो श्लोक में ऐसे तो लगते हैं कि इसमें क्या बात है, लेकिन बहुत गुई है, एक एक श्लोक में मैसेज भगवान दे रहे हैं। गलत प्रॉमिस तो भूल कर भी नहीं देना है। अगर किसी के पास से कुछ भी सीखना हो, कुछ भी छोटी से छोटी चीजें भी सीखना हो तो नम्र हो जाओ। हो सकता है कि सामने वाली व्यक्ति बहुत प्रेमाल हो तो वो तो तुमको ज्ञान अच्छी तरह से दे देगी, लेकिन भगवान देखता है ये यू नो ये तो बेचारी भोली है तो अपना सबको दे दे, लेकिन ये अहंकारी है, उसके सामने झुकता नहीं है, प्रेम नहीं है उसके लिए, तो वो ज्ञान, ये शब्द का ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान से लाभ नहीं मिलेगा। और भगवान ने तो सभी ज्ञान का दाम चुकाने के लिए है। कोई भी शिक्षा लो, पहले के जमाने में जो था वो, हम स्कूल में भी जाते हैं तो फी नहीं देते हैं क्या? तो यहाँ पर सब लोगों को, यहाँ जितना पैसा मिला है ना उतने लोग कंजूस हो गए हैं, सब मुफ्त में चाहिए, सब मुफ्त में चाहिए। तो ऐसा मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तुम किसी को देते हो मुफ्त में बताओ, तुम दोगे तो तुमको मिलेगा, लेकिन वो तो सौदा सब लोग समझते नहीं है। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि भगवान का कीर्तन गाते ही रहे, लेकिन अब क्या करें, दूसरे लोग हैं ना, जाओ बोले स्वयं ही। यहाँ पर दो और तीन श्लोक का तो आज पूरा कर ले। यहाँ देखो दुर्योधन टॉन्ट मारते हैं, सीधी बातें नहीं करते ना, तो दुर्योधन के मन में कपट है, बहुत कपट है, क्योंकि कपटी है इसलिए तो ये युद्ध का प्रसंग आया है। यू नो ये पांडव के साथ कपट ही कपट किया है, अभी उसको डर है। और कपटी आदमी होते हैं ना, उनको बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको पता है उनके अंदर भी आत्मा बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, तो वो कपट उसको शांति से बैठने नहीं देता है। तो उसको डर लगता है कि ये पक्ष तो मेरे लिमे है, मेरे पक्ष में आए हैं द्रोणाचार्य जी और भीष्म जी, लेकिन ये ना हो कि अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है तो मन से नहीं लड़ेंगे। ऐसा होता है ना, जिनके प्रति प्रेम हो भले ही लाचारी से उनके पक्ष में हमारे पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ये बात नहीं हो कि अर्जुन उनको दिखे और वो ठीक मन से लड़े ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे शब्द यूज करता है, कहते हैं तम तुम्हारा शिष्य है, और देखो उनको थोड़ा तान मतलब गुस्सा आए, क्रोध आए, वैर भाव की वृत्ति आए द्रोणाचार्य जी में, इसलिए ये शब्द कहा है कि तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारे सामने है। कितनी कितनी शर्मजनक बात है, क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो क्रोध आएगा ना उनको, उनको तो द्रोणाचार्य जी को तो बड़ा अर्जुन के लिए प्रेम है, तो प्रेम को, उनके प्रेम को परिवर्तन करना है राग और द्वेष में, और राग द्वेष आएगा तभी तो लड़ाई होगी। हाँ, और ये जो द्रोणाचार्य है ये तो राग यानी रंग रंग में रंग जाना, उनके राग का मतलब है जिस आदमी के प्रति राग हो उनके रंग में रंग जाते हैं, तो अभी तो ये अर्जुन के रंग में रंगे हुए हैं द्रोणाचार्य जी, अब इनको तो द्वेष लाना है, द्वेष यानी तो जलन होनी चाहिए एक प्रकार की, और जलन तो इनके हृदय में है नहीं, और जलन नहीं होगी तो लड़ाई कैसे करेंगे मन देकर, और मन देकर लड़ाई नहीं करेंगे तो मैं तो हार जाऊंगा। तो ये सब उसके दिमाग में है, ये शब्द के पीछे ये सब उसके दिमाग में आ रहे हैं कि ये बुद्धिशाली शिष्य की बड़ी सेना की जो उसने रचना की है वो तो आप देखो आपका ही शिष्य है, आपके ही सामने खड़ा है। और द्रुपद पुत्र जानबूझकर कहा है, द्रुपद पुत्र जानबूझ के इसलिए कहा है कि द्रुपद राजा के प्रति ये भी कोई संत नहीं थे ना, वो तो ये क्या कहते अध्यात्म के गुरु नहीं थे, तो अध्यात्म के गुरु को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो तो आते ही नहीं पहली बात तो ये कृष्ण की तरह। लेकिन इनके द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य की क्या थी, लड़ाई थी ना,
पुराना
वैर भाव था, दोनों एक आश्रम में पढ़ते थे, फ्रेंडशिप थी, द्रुपद राजा बन गए बड़े, तो द्रोणाचार्य की उन्होंने अपमान किया था राजमहल में। तो कहते हैं कि और ये आपका शिष्य है, और दूसरी बात यह कि द्रुपद पुत्र है, किसी और का पुत्र नहीं है। चलो भाई तुम्हारा शिष्य होता कोई और की बात होती तो बात भी अलग थी कि पक्ष तो लेने था, और ये तो द्रुपद पुत्र जिनको जिनके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, जिनके साथ जिसने तुम्हारा अपमान किया है, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ है। तो वो उसको शॉर्ट में द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति वैर भाव की वृत्ति या द्वेष उत्पन्न करना चाहता है। तो शब्द में बड़ी शक्ति है, शब्द जो होते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है, शब्दों की तरह तो प्रॉब्लम है। एक संत है, उनको किसी ने पूछा कि ये सब इंद्रियां जो होती है मनुष्य की उसमें सबसे बड़ी पावरफुल क्या चीज है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, तो कहने लगे जीभ। नहीं, बोले खराब क्या है, सबसे खराब चीज क्या है, तो बोले जीभ, जो युद्ध करती है कड़वे शब्द बोलकर। अच्छी क्या चीज है, तो बोले जीभ। दोनों भी अगर भगवान का कीर्तन करोगे तो उससे अच्छा एक भी नहीं है, मीरा की तरह, कबीर जी की तरह, सूरदास जी की तरह, तो ऐसा है। तो ये जीभ बड़ी बड़ी उसमें शक्ति है, शब्दों में बड़ी शक्ति है। तो शब्दों के द्वारा, इसीलिए आजकल जो सब कुछ भी नहीं रहा, शब्दों की वैल्यू ही नहीं रही है। यहाँ माँ चिल्लाते जा रही है, डिनर तैयार है, कोई सुनता ही नहीं। बच्चे चिल्लाते हैं तो माँ सुनती नहीं है, माँ सुनती है चिल्लाती तो बच्चे सुनती नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं है, शब्दों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब शब्दों की वैल्यू ही नहीं रही है, एक बात बार बार कहना पड़ता है, ब्रश कर लो, खा लो, कितनी बार रिपीट करते हो देखो तुम, एक की एक बात। क्यों? क्योंकि शब्दों की वैल्यू का पता ही नहीं है कि शब्दों में कितनी शक्ति है, बार बार बोलने से हमारी शक्ति कितनी व्यय हो रही है, और वो शक्ति व्यय हो जाती तो हम थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो हम आनंद नहीं कर पाते हैं। तो हर बात का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका सदुपयोग करके हमको खुश होना था। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम ग्रुप में करेंगे। अब दो सेना का वर्णन होने वाला है, पांडव सेना और कौरव सेना का। तो चार श्लोक ग्रुप में ही जाते हैं, तो ग्रुप में ही करेंगे नेक्स्ट टाइम होपफुली। और एक एक क्लास होगा, फिर मैं जा रही हूँ ह्यूस्टन, वहां पर भी ग्रुप है, दो तीन बच्चों का।